मैं दुबई जा रहा हूं, साकेत ने धीरे से कहा। सुल्ताना बेगम ने हैरानी से पूछा, दुबई? हाँ, अम्मी चाहती हैं कि मैं वहां चला जाऊं। वो एक पल रुका, फिर बोला, मैं मानता हूं मैं कमजोर हूं, दिल का भी, लेकिन मैं झूठा नहीं हूं। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, या शायद आखिरी कोशिश। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, साकेत ने फिर कहा। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सका तो मुझे खुशी होगी। नूर ने इस बार उसकी आंखों में सीधा देखा। तो मेरे दुश्मनों से दूर रहो, यही सबसे बड़ी मदद होगी। उसने हल्का सा सिर उठाकर ऊपर देखा, जहां खलीर खड़ा था, चुप मगर सब पर नजर रखे हुए। नूर बिना कुछ और कहे अंदर चली गई। साकेत वहीं कुछ पल खड़ा रहा, जैसे सब कुछ कहकर भी कुछ बाकी रह गया हो। फिर उसने सुल्ताना बेगम को सलाम किया और मुड़कर चला गया। फैजान अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ चुका था और अपनी जॉब भी ज्वाइन कर चुका था। अब उसके पास इतना वक्त था कि वो नूर के बारे में सोच सके। वो सच में उसकी मदद करना चाहता था। उसके इकबाल से इस बारे में बात भी हो चुकी थी, जिससे वो नूर की पढ़ाई के बारे में जान गया था। नूर हर वक्त रेहान के आदमी की आंखों के सामने रहती थी और ये बात फैजान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने अपनी अकेडमी की प्रिंसिपल से नूर के बारे में बात की। उसने बताया कि उसकी नज़र में एक ऐसी लड़की है जो पढ़ा सकती है। फैजान की समझ और सोच पर प्रिंसिपल को भरोसा था, क्योंकि वो उसे बहुत इंटेलिजेंट मानती थी। इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए कह दिया, जब चाहो उसे भेज देना, मैं उससे बात कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ सादिया गहरी सोच में डूबी लॉन में बैठी थी। उसका सब कुछ जैसे छिन चुका था। अब उसे समझ आ रहा था कि कैसे लोगों के रंग बदल जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी वहीं बैठी थी। तभी रेहाना बेगम उसे बुलाने आई। सादिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर नींद नहीं आती तो दवा लेकर सो जाया करो, तुम फिर यहीं बैठी हो, रेहाना बेगम ने हल्की नाराजगी से कहा। सादिया ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और उनकी तरफ देखा। आज ही तो मेरी आंखें खुली हैं और आप कह रही हैं कि मैं फिर दवा खाकर सो जाऊं? उसकी आवाज में दर्द साफ छलक रहा था। आपको सब पता था कि ताया अब्बू पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर मेरी एक एक चीज अपने नाम करवा रहे हैं, सादिया ने रोते हुए कहा। तभी फरीद खान भी वहां आ चुका था। सादिया आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई। वो मेरे अब्बा की प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों ने मुझसे छीन ली, वो सब मेरे पास होना चाहिए था। तुम भी तो अपने अब्बा की बेटी थी, तुम्हें भी जहां नहीं होना चाहिए था, फरीद खान ने बेशर्मी से कहा। सादिया की आवाज कांप गई। आपने मेरा हक छीना है। कोई हक नहीं छीना मैंने, फरीद खान गुस्से में बोला, बल्कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से से ज्यादा ही दिया है। इतने में माहिरा लॉन के दरवाजे पर आकर रुक गई। वो अंदर आई थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर वहीं ठिठक गई। वैसे भी तुम्हारा हिस्सा बनता ही कितना था, फरीद खान ने ताना मारा। उससे ज्यादा तो तुम इस घर में खा पी चुकी हो, ऐश कर रही हो यहाँ, वरना फैजान को देखो, उसे तो नौकरों की तरह पाला है। फरीद खान की बात सुनकर सादिया एक पल के लिए सन रह गई। उसे अपनी बात याद आई कि उसने नूर को खाने पीने का ताना मारा था। इससे अच्छा होता आप हमें यहाँ रखते ही नहीं, सादिया ने धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा। तो और क्या करता मैं, फरीद खान भड़क उठा। तुम दोनों को घर से निकाल देता या कहीं और भेज देता। जब दिल में जगह नहीं थी तो घर में जगह क्यों दी, सादिया आप गुस्से में थी। अगर दिल में जगह नहीं होती तो क्या तुम आज रेहान की बीवी होती, फरीद खान ने तीखा जवाब दिया। सादिया अचानक हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। ये सब आपने अपने पैसों के लिए किया है, पैसा पैसा क्या लगा रखा है तुमने, फरीद खान चिल्लाया। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे ताया अब्बू, अब तक चुप बैठी रेहाना बेगम अचानक बोल उठी। आखिर दिया ही क्या है तुमने हमें, 2 साल हो गए तुम्हारे निकाह को और तुम हमें एक औलाद तक नहीं दे पाई। ये सुनकर सादिया जैसे पत्थर की हो गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रिश्तों में फूट डाल दी तुमने, रेहाना बेगम रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप पूछ रही थी ना कि मैं रिदा को डिनर पर इन्वाइट क्यों नहीं करती, यही वजह है, उन्होंने गुस्से से फरीद खान की तरफ देखा। जुबैदा ने अरमान की मंगनी भी रेहान के आने से पहले इसलिए कर दी क्योंकि वो इससे डरती थी। ये लड़की जहां जाती है आग लगा देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। हर इल्जाम जैसे सादिया के दिल में चुभ रहा था। वहीं एक कोने में खड़ी माहिरा के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उन्हें ये सब देखकर सुकून मिल रहा था। उनके हिसाब से अब सादिया और रेहान का रिश्ता खत्म होने ही वाला था और उसके बाद उनके लिए रास्ते खुल सकते थे। संभल जाओ सादिया, रेहाना बेगम ने आखिरी बार किया, इससे पहले कि रेहान तुम्हें तलाक दे दे, फिर शिकायत मत करना। अब सादिया से और सहा नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी था। वो तेजी से वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। खलील ने घबराकर रेहान को फोन किया। सर, साकेत घर आया था, उसने बताया। क्या? रेहान की आवाज गुस्से से भर गई। तुमने उसे अंदर आने कैसे दिया? सर, उसने ही मुझे पहले खबर दी थी, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका, खलील ने सफाई दी। बेवकूफ, रेहान चिल्लाया, मैंने साफ कहा था किसी को भी घर के अंदर आने की इजाजत नहीं है। तभी खलील की नजर ऊपर से नीचे गई। सर, इकबाल घर से बाहर जा रहा है, हाथ में बैग है, उसने बताया। रेहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता है, वो कोर्ट जा रहा है, आज केस की तारीख है। मैं उसके पीछे जाऊं? खलील ने पूछा। नहीं, अभी रुको, मेरी कॉल का इंतजार करो, रेहान ने सख्ती से कहा। उधर फैजान को भी खबर मिल चुकी थी, आज कोर्ट में इकबाल का फैसला उसके खिलाफ गया है। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया। वो चुपचाप बैठ गया, आंखों में उदासी साफ छलक रही थी। घर पर नूर और सुल्ताना बेगम बेचैनी से इकबाल का इंतजार कर रही थीं। आज कुछ अजीब था, ना तो इकबाल खुद लौटा था, ना ही उसका कोई फोन आया था, जबकि उसकी आदत थी जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही खत्म होती वो तुरंत फोन करता। दोनों की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी धड़ 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 किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। नूर घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा खुलते ही इकबाल नहीं बल्कि किराएदार अपने आदमियों के साथ खड़ा था। हम केस जीत चुके हैं, उसने घमंड से कहा, अब तुम लोग यहां से निकलो। इतना कहकर उसके आदमी आंगन में पड़ा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। ये क्या हो रहा है? नूर घबरा कर बोली। अब ये घर हमारा है, किराएदार ने ठंडे लहजे में कहा, तुम लोग यहां से अभी निकल जाओ। तभी पीछे से इकबाल अंदर आया, सिर झुका हुआ, कदम लड़खड़ाते हुए, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी हो। रुक जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा, हम खुद ही चले जाएंगे। इकबाल की बात सुनकर किराएदार और उसके आदमी कुछ देर के लिए रुक गए और बाहर चले गए। इकबाल अंदर आकर जमीन पर बैठ गया, उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? सुल्ताना बेगम घबराकर उसके पास बैठ गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद, हमारे वकील ने हमें धोखा दिया, इकबाल की आवाज टूट गई। नूर सब समझ चुकी थी। कैसा धोखा? उसने धीरे से पूछा। उसने किराए का एग्रीमेंट ही फाड़ दिया, सारे सबूत खत्म कर दिए, इकबाल बोला, और कोर्ट में ये साबित कर दिया कि मैंने ये घर सालों पहले उसे बेच दिया था। सुल्ताना बेगम दंग रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब हो सकता है, इकबाल कड़वी हंसी हंसा। हमारा वकील बिक चुका था, कमरे में सन्नाटा छा गया। तो अब? सुल्ताना बेगम की आवाज कांप गई। हमें ये घर खाली करना पड़ेगा, इकबाल ने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा। तभी इकबाल का फोन बजा जो पास ही रखा था। नूर ने आगे बढ़कर फोन उठा लिया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से आवाज आई।
जी, नूर बोल रही हूँ, नूर ने जवाब दिया।